नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहतनाज। केंद्र सरकार ने देश में दशकों पुराने मौजूदा श्रम कानूनों को सरल और कारगर बनाने के उद्देश्य से चार नई श्रम संहिताओं को लागू करने की घोषणा की। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि नई श्रम संहिताएं देश के कार्यबल के लिए बेहतर वेतन, सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करेंगे। वेतन संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कार्यदशा संहिता 2020 लागू हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कदम की सराहना की है। उन्होंने कहा कि ये श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा तथा राष्ट्र के आर्थिक विकास को सशक्त बनाएगा। वहीं गृहमंत्री अमित शाह ने नए श्रम संहिताएं लागू होने पर देश के श्रमिकों को बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि ये संहिता श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा, महिला मजदूरों के लिए समान अवसर और गिग तथा असंगठित श्रमिकों को कानूनी पहचान की गारंटी देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में G20 शिखर सम्मेलन से अलग ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने रक्षा और सुरक्षा, दुर्लभ खनिजों, व्यापार और निवेश, शिक्षा और लोगों के बीच मेल जोल जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों प्रधानमंत्रियों ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी अपने विचार साझा किए। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने हाल ही में हुए दिल्ली विस्फोट के पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना भी जताई। गृहमंत्री अमित शाह ने निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को मतदाता सूची का शुद्धिकरण करार दिया है। उन्होंने इस प्रक्रिया का विरोध करने वाले और अवैध घुसपैठ को समर्थन देने वाले राजनीतिक दलों को आगाह किया।
चुनाव आयोग द्वारा जो SIR की प्रक्रिया चल रही है, मतदाता सूची का शुद्धिकरण जो चल रहा है, इसका खिलाफत कर रहे हैं। मैं आज इस हीरक जयंती समारोह में बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम इस देश में से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर बाहर निकालेंगे, ये हमारा प्रण है।
गुजरात के भुज में सीमा सुरक्षा बल BSF के हीरक जयंती समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए लोगों से SIR को पूर्ण समर्थन देने का आग्रह किया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सिंगापुर में विभिन्न कंपनियों के साथ बैठक की। श्री वैष्णव ने कहा कि सिंगापुर सेमीकंडक्टर उद्योग संघ भारत के साथ मिलकर देश की सेमीकंडक्टर परियोजनाओं में सहयोग कर रहा है। श्री वैष्णव ने अधिकारियों और उद्योग समूहों के साथ सेमीकंडक्टर परियोजनाओं के लिए तरक्की विशेषज्ञों और अभियंताओं के कौशल विकास पर चर्चा की। मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो NCB की अहमदाबाद इकाई ने ड्रग तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय ड्रग तस्करी में शामिल दो तस्करों को सजा दिलाने में कामयाबी हासिल की है। गुजरात की कपड़वंज कोर्ट ने दोनों आरोपियों को NDPS एक्ट 1985 के नियमों के तहत 14 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 1,00,000 रूपये का जुर्माना भी लगाया। संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित दुबई एयर शो में भारतीय वायुसेना का एक तेजस लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। भारतीय वायुसेना के अनुसार इस दुर्घटना में पायलट की मौत हो गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घटना में वायुसेना के पायलट की मृत्यु पर दुख जताया है। रिजर्व बैंक ने आज सीमा पार भुगतान को बढ़ावा देने के लिए UPI प्रणाली को दूसरे देशों की तीव्र भुगतान प्रणाली से जोड़ने की घोषणा की है। ये पहल क्रॉस बॉर्डर पेमेंट को बढ़ाने के लिए G20 रोडमैप के साथ जुड़ी हुई है, जिसमें सस्ते, कुशल, अधिक पारदर्शी और विदेशों से भारत में आसान तरीके से पैसा भेजने पर ध्यान दिया गया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज से आंध्र प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। वे पुट्टपर्थी स्थित श्री सत्य साई उच्च शिक्षा संस्थान के 44वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय आज मुंबई में राष्ट्रीय हज सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इस सम्मेलन में अगले वर्ष होने वाले हज की तैयारियों की व्यापक समीक्षा की जाएगी, जिसमें सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की हज समितियों के कार्यकारी अधिकारी भाग लेंगे। मौसम विभाग ने आज पश्चिमी मध्य प्रदेश में शीतलहर चलने का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी तथा कराईकल के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश, गरज और बिजली गिरने की आशंका जताई है। इस बीच दिल्ली NCR में वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।